नमस्कार भारत, आज है 4 नवंबर, दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। कांटे के टक्कर वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी और ट्रंप निर्णायक राज्यों में कर रहे हैं प्रचार। ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने पहली बार किया पति के लिए प्रचार।
I will also work hard to improve everyday life for women, the women in America.
पाकिस्तान ने 8 भारतीय उच्चायोग अधिकारियों पर लगाया जासूसी का नेटवर्क चलाने का आरोप। भारत ने कहा बेबुनियाद और बिना सबूतों के हैं आरोप। ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने की नई पहल, पेमेंट करना होगा और भी आसान।
होलसेलर मोस्टली कैश में डील करते हैं, दे डोंट ट्रस्ट ऑन दैट ATM एंड बैंक्स। उनको कैश में डील करना ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि कैश में एक ट्रस्ट रहता है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले BBC समाचार विस्तार से।
BBC समाचार, आप सुन रहे हैं सुशील झा से। अमेरिका में अगले मंगलवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए दोनों दलों ने अभियान तेज कर दिया है। मतदान से पहले के सर्वेक्षणों में कांटे की टक्कर होने की संभावनाओं के बीच दोनों उम्मीदवार उन राज्यों में प्रचार कर रहे हैं जहां के मतदाता अपना मन बदल सकते हैं। आयोवा में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर चुके सीनेटर टेड क्रूज ने समर्थकों से ट्रंप को वोट करने की अपील की है। इतना ही नहीं, ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने प्रचार अभियान में पहली बार भाषण दिया है। उधर डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने नॉर्थ कैरोलिना में लोगों को आगाह किया है कि ट्रंप के नेतृत्व में जीवन कठिन हो जाएगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी फ्लोरिडा की एक रैली में युवाओं से डेमोक्रेट पार्टी को वोट देने की अपील की। अमेरिका की अदालतों में अगले हफ्ते होने वाले मतदान को लेकर एक अलग कानूनी लड़ाई जारी है। पेंसिल्वेनिया में एक जज ने उस कानून को मान्यता दे दी है जिसके तहत रिपब्लिकन्स के लिए उन इलाकों की निगरानी करना कठिन होगा जहां डेमोक्रेट पार्टी को वोट मिल सकते हैं। ट्रंप के समर्थकों ने इस फैसले का विरोध किया है जिसके तहत रिपब्लिकन कार्यकर्ता उसी जगह वोटिंग देख सकते हैं जहां वो रजिस्टर्ड हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि लीबिया के तट से निकले 2 नावों के डूब जाने से कम 200 लोगों के मारे जाने की आशंका है। 2 छोटे नावों के बीच समुद्र में टूट जाने से उसमें सवार लोग मारे गए हैं। रात कर्मियों ने दोनों जहाजों से कुछ ही लोगों को बचाया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के प्रवक्ता लियोनार्ड डॉयल का कहना था, 2 रबर की नौकाएं थे जिसमें लोग भरे हुए थे, कम से कम 300 लोग। लीबिया से ये नावें निकली थी लेकिन खराब मौसम के कारण दोनों नावें डूब गई। कम से कम 250 शरणार्थी डूबे हैं, राहत कार्य चल रहा है। लियोनार्ड डॉयल के शब्द। भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले अपने 6 अधिकारियों को वापस बुलाया है और अब पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतीय उच्चायोग के 8 अधिकारी मिलकर जासूसी नेटवर्क चला रहे थे। पाकिस्तान में इन लोगों की तस्वीरें मीडिया में लीक कर दी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों का खंडन किया है लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारत इन अधिकारियों को वापस बुलाएगा या पाकिस्तान उन्हें हटने के लिए कहेगा। भारत सरकार ने टीवी चैनल NDTV इंडिया को आदेश दिया है जिसके तहत चैनल को 1 दिन के लिए ऑफ एयर करने को कहा गया है। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी टीवी चैनल NDTV इंडिया को ये नोटिस भेजा है और ये मामला पठानकोट हमलों की कवरेज से जुड़ा है। NDTV ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनका कवरेज बिल्कुल संतुलित था और इस तरह से उन्हें निशाना बनाया जाना सही नहीं है। कंपनी ने कहा है कि आपातकाल के काले दिनों के दौरान प्रेस की आज़ादी छीनी गई और अब यह अभूतपूर्व है जिस तरह से NDTV के खिलाफ कदम उठाया गया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जॉन क्लॉड जुंकर शुक्रवार को ब्रितानी प्रधानमंत्री के साथ ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने में संभावित देरी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। गुरुवार को हाईकोर्ट ने कहा था कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को संसद की मंजूरी जरूरी है। ब्रिटेन की सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर की संभावनाओं के बीच रिपब्लिकन पार्टी ने अपने अभियान में बड़ी तेजी दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी रह चुके सीनेटर टेड क्रूज ने आयोवा राज्य में समर्थकों को जुटाया है, जबकि खुद ट्रंप की पत्नी ने प्रचार अभियान के दौरान पहली बार भाषण दिया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राज्यों में पूरी ऊर्जा से प्रचार कर रहे हैं। पूरी जानकारी के साथ सुशील झा।
यह पहली बार है जब मेलानिया ने अपने पति डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार किया है। पेंसिल्वेनिया में मेलानिया और उनकी बेटी इवानका ने ट्रंप के समर्थन में भाषण दिए हैं और खास तौर पर महिलाओं से अपील की है कि वो ट्रंप को वोट दें। मेलानिया ने अपने भाषण में बताया कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो फर्स्ट लेडी के तौर पर मेलानिया किन कामों को प्रमुखता देंगी। उनका कहना था,
आई विल आल्सो वर्क हार्ड part to improve everyday life for women.
मैं महिलाओं का हर दिन का जीवन बेहतर करने के लिए काम करूंगी। अमेरिका की महिलाएं बेहद मजबूत, समझदार, प्रतिबद्ध और मेहनती हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो वो सब कुछ हासिल कर सकती हैं। देश की 50% महिलाएं गरीबी में हैं और हम तब तक पूर्ण रूप से विकसित देश नहीं कहे जा सकते जब तक महिलाओं की हालत बेहतर नहीं होती। मेलानिया ट्रंप के शब्द। उधर डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन भी स्विंग राज्यों में लगातार प्रचार अभियान में लगी हुई हैं। नॉर्थ कैरोलिना में भाषण देते हुए हिलरी ने लोगों को चेताया कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर कमांडर इन चीफ बनते हैं तो ये बेहद खतरनाक होगा। वो ऐसे आदमी हैं जो चाहते हैं कि देशों के पास परमाणु हथियार हो। वो विदेशी नेताओं की बेइज्जती कर देंगे जिससे युद्ध संभव है। हिलरी क्लिंटन के शब्द। उधर ट्रंप ने अपने भाषणों में हिलरी पर निशाना साधने की बजाय अपनी जीत को अवश्यंभावी करार दिया है। फ्लोरिडा में प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी पार्टी और वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे अमेरिका में बड़े बदलाव होंगे।
We're on the cusp of something that's so amazing. It's historic change.
हम कुछ बेहतरीन कर गुजरने की राह पर हैं। ये एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। एक असफल राजनीतिक व्यवस्था से सत्ता दूसरे हाथों में जाएगी। हम ये ताकत अमरीकी लोगों के हाथों में सौंपेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। हालांकि अब हिलरी और ट्रंप की रेटिंग में अंतर काफी कम रह गया और शायद इसीलिए राष्ट्रपति बराक ओबामा लगातार हिलरी के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। मियामी में एक सभा में ओबामा ने फिर से ट्रंप की आलोचना की और कहा,
If you accept the support of Klan sympathizers,
अगर आप राष्ट्रपति बनने से पहले ही नस्लभेदी संगठन क्लू क्लक्स क्लैन के समर्थकों के साथ सहानुभूति रखते हैं तो आप राष्ट्रपति बन के भी उनसे समर्थन लेंगे। अगर आप राष्ट्रपति बनने से पहले संविधान की बेइज्जती करते हैं और मीडिया को बंद करने की बात करते हैं, लाइव डिबेट में अपने विरोधी को जेल में डालने की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति बनने के बाद आपके पास ऐसा करने की ताकत होगी। लोगों को सोचना होगा कि हम कैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। बराक ओबामा के शब्द। चुनाव में अब मात्र 5 दिन बचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में चुनाव प्रचार और तेज ही होगा।
ब्यूरो सुना रहे थे सुशील झा। पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के 8 अधिकारियों पर खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी के जासूस होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक इनमें से 6 लोग रॉ के एजेंट हैं जबकि 2 आईबी के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा,
A number of Indian diplomats and staff belonging to the Indian intelligence agencies RAW and intelligence bureau.
नफीस जकारिया कह रहे थे, कई भारतीय राजनयिक और कर्मचारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ कूटनीतिक काम की आड़ में पाकिस्तान में चरमपंथी और विनाशकारी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। ये थे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया के शब्द। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इस पर कहा कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और बिना सबूत के हैं और भारत इन्हें खारिज करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारियों को गलत तरीके से फंसाया गया है और वे अधिकारी दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर काम कर रहे थे। इससे पहले भारत ने अपने यहाँ पाकिस्तानी दूतावास में तैनात कर्मचारी को जासूसी के आरोप में वापस भेज दिया था। क्या हाल के घटनाक्रम इस ओर इशारा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं? बीबीसी उर्दू के हमारे सहयोगी उमर आफरीदी ने भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल से इन सवालों का जवाब जानना चाहा।
देखिए, आगे भी ऐसे हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। इस दफे क्योंकि पाकिस्तान के तरफ कुछ इल्जाम लगे, वो जो एक्स नेवल ऑफिसर है हिंदुस्तान का जिसको पकड़ा गया और उसको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया वगैरह वगैरह, तो अक्सर ये जो जासूसी काम तो चलता रहता है, हर देशों में चलता रहता है, जो आपस में बहुत फ्रेंडली देश है वो भी चलता रहता है। तो इसलिए किसी को पकड़ लिया यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में, उसने कुछ बता दिया कि पाकिस्तान हाई कमीशन में कौन कौन है जो इस रिंग में है। एक तो तरीका होता है कि आप चुपचाप कहिए कि भाई इन लोगों को आप वापस बुला लीजिए, लेकिन इस दफे नाम पब्लिश कर दिए, जो मैं समझता हूँ कोई ठीक बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ नाम पब्लिश कर दिए, एक्सपोज हो गए, तो उस तरफ से पाकिस्तान में भी रिटेलिएट कर दिया, पाकिस्तान की ओर से भी रिटेलिएशन हुई, तो वहाँ भी कुछ नाम पब्लिश हो गए, तो ये चल रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन क्योंकि माहौल वैसे अच्छा नहीं है, तो क्योंकि टेंशन है, तो इस किस्म की बातें हो रही हैं।
अच्छा, ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में जो कशीदगी है उसे कम करने की कोशिश नहीं हो रही, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा ही है या कोई साथ साथ मुख्तलिफ चैनल से कोई राबते भी बरकरार हैं?
देखिए, मैंने भी कुछ पूछताछ की है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैनल एस्टेब्लिश हुई थी दो NSA ने, वो चालू है, ऐसा नहीं है कि वो बंद है। लेकिन कुछ पाकिस्तान की में भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये जो पिछली एजिटेशन हुई जो इमरान खान ने करना चाहा और कि भाई लॉकडाउन कर दो, धरना कर दो, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की भी जो पोजीशन है कुछ ढीली हो गई है, क्योंकि ये पैनामा पेपर का जो कांड था, तो इसलिए उस तरफ कुछ लगता है हमें गलत या सही कि पाकिस्तान में इस समय पे कोई ऐसी एटमोसफियर नहीं है और लीडरशिप नहीं है जो कोई डिसीजन ले सके इन बातों पर। हमने देखा कि उरी के अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो अक्सर एटीट्यूड रहा है वो यही रहा है कि भाई इस तरीके से कुछ संबंध को ठीक किया जाए, तो उनके ऊपर भी प्रेशर था जो उन्होंने स्टेटमेंट दी और यूनाइटेड नेशन में जाकर कहा, तो वो ऐसा लगा इस तरफ हमारे हिंदुस्तान में कि भाई उनके ऊपर प्रेशर है आम पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस का कि आप जरा टफ पोस्चर अडॉप्ट कीजिए, और हमारी तरफ से भी क्योंकि वो 18 लोग मारे गए तो बहुत पब्लिक प्रेशर है कि भाई गवर्नमेंट को आप कुछ कीजिए, तो इसलिए माहौल तो अच्छा नहीं है, तो मैं मानता हूँ।
ये थे भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल और उनसे बात कर रहे थे उमर आफरीदी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, BBC हिंदी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल विकास रथ यात्रा पर निकले। हालांकि पहले से लग रहे कयासों के विपरीत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जरूर आए, लेकिन अखिलेश और शिवपाल के बीच तल्खी बरकरार रही। वहीं जगह जगह लगे पोस्टरों और होर्डिंगों में भी शिवपाल की तस्वीरें नदारा दिखी। पूरे घटनाक्रम पर सुनिए समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
अखिलेश यादव का बहुप्रतीक्षित लग्जरी रथ भले ही कुछ 100 मीटर ही चलकर रुक गया हो, लेकिन उन्नाव तक की यात्रा उन्होंने जरूर पूरी की और उनके समर्थकों का उत्साह भी भरपूर रहा। उन्नाव जिले के शुक्लागंज में पहुंचकर अखिलेश ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और वहां रथ की खराबी का भी जिक्र किया।
क्योंकि मैं जानता था उन्नाव की जनता हमेशा बड़े पैमाने पे आकर के समाजवादियों का स्वागत करती है, इसे रथ छोड़ करके अगर हमें गाड़ी से भी चलना पड़ा तो हम गाड़ी से चल करके आपके बीच में पहुंचे हैं।
अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रही।
बीजेपी के लोग ये सर्जिकल स्ट्राइक कहकर के लोगों को गुमराह करेंगे। पहले अच्छे दिन की बात की, और आज कहने सर्जिकल स्ट्राइक, मैं पूछना चाहता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? आप दिवाली मनाने सीमा पर जा रहे जवानों के साथ और जवानों
निकलने की कोशिश करो,
भागकर भी मत कर रहे हैं, आपके पास रास्ता क्या है? ये जवान जो हमारी रक्षा कर रहे हैं सीमा पर, हम समाजवादी लोगों ने मदद की होगी।
इससे पहले अखिलेश यादव के रथ को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाई। पिछले कुछ समय से परिवार और पार्टी के भीतर चल रहे विवादों के चलते इस बात को लेकर आशंका थी कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव कार्यक्रम में आएंगे या नहीं। शिवपाल सिंह यादव आए जरूर, लेकिन कुछ कटे कटे से रहे। यही नहीं, अखिलेश समर्थकों ने उनके विरोध में नारे लगाने की भी कोशिश की। हालांकि पूरे कार्यक्रम में आजम खान और अमर सिंह की अनुपस्थिति जरूर चर्चा में रही। वहीं उन्नाव में हुई जनसभा में पार्टी के कई नेता और मंत्री उपस्थित थे। इन नेताओं के भाषणों से साफ जाहिर हो रहा था कि अब पार्टी और सरकार पर पकड़ अखिलेश यादव के ही हाथों में है।
हमारे दल से आदमी इस बात को मानता है कि 2017 में आपके नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी, और जब 17 में आपकी सरकार बहुमत की बनेगी तो 2019 में जो लड़ाई होगी लोकसभा का, उस लड़ाई में अखिलेश बनाम मोदी की लड़ाई होगी, पिछले की लड़ाई नहीं हो
सकती। वहीं सभा में पहुंचे कुछ लोगों से जब बात हुई और उनसे आने का कारण पूछा तो उन लोगों का कहना था,
सब जनता समझा रहे हैं, अब जो जो इस करी वो अपन भाव मुक्ति वह है ही का है, ये भा चलो पार्टी देखा चला जाए, मीटिंग हुई तो भाव चले आए।
आप लोग कार्यकर्ता भी हो क्या पार्टी के?
नहीं, कार्यकर्ता
कार्यकर्ता नहीं हो, बस केवल सुनने के लिए चले आए।
सुनने हमारा प्रधान जी कहा चलो सबको चला जाए।
तो बड़ी भीड़ भी है, पूरा सड़क वड़क जाम हो गया था।
नहीं सड़क, हाँ भीड़ तो वही है, बस थे हम लोग आए रहे, बस गए रहे।
हम तो आए रहे, उनका 12 बजे तक दबते नहीं थी का, अभी थी का है।
बहरहाल गुरुवार का कार्यक्रम अखिलेश की शक्ति परीक्षण के तौर पर लिया जा रहा था और जानकारों का कहना है कि वो उसमें सफल भी रहे, लेकिन कल यानी 5 नवंबर को होने वाले शक्ति परीक्षण से ये साफ हो जाएगा कि पार्टी का भविष्य अब किसके हाथों में है, अखिलेश के या शिवपाल के। समीर आत्मज मिश्र, BBC उन्नाव।
हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से बात की और पूछा कि कल के घटनाक्रम क्या संकेत करते हैं।
ये तस्वीर ही है, क्योंकि जहां तक उसका सवाल है, जो एक डिवाइड क्रिएट हो गया था परिवार में और जो खुलेआम सड़कों पे दिखाई पड़ने लगा था, उसको जो बराबर करने का प्रयास किया गया, उसका एक ये पहला स्टेप है। और उसको बराबर इसलिए करना पड़ा, इनको लगा कि कोई चारा नहीं है, इस वक्त अगर अलग होते हैं तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ये जरूर था कि अगर अखिलेश यादव अलग होते हैं तो उनकी राजनीति आगे की उसमें आ जाएगी, क्राइसिस में। और अगर शिवपाल अलग होते हैं तो ये जरूर था कि अगर पार्टी जिसके पास रहेगी वो उसका वर्चस्व रहेगा फिर भी आपस में दोनों के बीच में। पिता ने अंतिम उसमें चरण में ये किया, पहले तो झगड़ा चल रहा था, पिता ने अपने बेटे का जो पुत्र प्रेम है उनका कहीं से जाग गया और आखिर में उन्होंने उसकी कुर्सी बचा ली। और कुर्सी बचाने से बहुत कुछ बच गया, क्योंकि चीफ मिनिस्ट्री रहने की वजह से जो बल्ब था पार्टी के सपोर्टर्स का वो अखिलेश के साथ रहा और चचा आइसोलेट हो गया। ये स्थिति मुलायम ने ही क्रिएट करी, अंत में उनको जब लगा कि नहीं हमारा सक्सेसर बेटा ही बनेगा। तो ये आज जो हुआ है वो ये दिखाने का प्रयास था कि हम सब एक हैं, हमारा परिवार एक है, पहले तो आप चौराहे पे लड़ लीजिए, एक दूसरे को गालियां दे लीजिए, उसके बाद दिखाइए। तो ये प्रॉब्लम क्या है, नेताओं में प्रॉब्लम क्या है, मैं जैसे देखता हूँ आम नेताओं में, हर पार्टी के नेताओं में, कि ये समझते हैं कि पब्लिक अंधी है।
मैं इसी पे आ रहा था शरद जी, कि ये जो दो तस्वीर अलग अलग तरह की जनता जनार्दन देख रही है उत्तर प्रदेश की, आपको क्या लगता है कि जनता जनार्दन को ये दूसरी तस्वीर कुछ हजम होगी या पब्लिक जो है सब जानती है?
कुछ ऐसा तबका है, देखिए ये इसमें ये होता है, इसमें अपनी जहन में क्या है वो बड़ा मैटर करता है। अगर हम ऑलरेडी थोड़ा सा इंक्लाइंड हैं समाजवादी पार्टी की तरफ तो हम बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि देखो सब झगड़ा खत्म हो गया। मैं आज देख रहा था वहां जब लोगों से बात कर रहे थे तो वहां जो लोग थे जो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक थे उनको तो लगता है कि हाँ झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन उसके बाहर जहां किसी से पूछिए तो बोल रहे अरे बकवास, ये तो अब चौराहे पे मारपीट करने के बाद अब कह रहे हैं हम एक हैं। तो पार्टी को देखिए ये इसमें तो ये दिखाने का था मकसद, तो इसके पीछे ये है असली मकसद, ये है कि मैं जो हूँ मैं हूँ लीडर। अखिलेश यादव देखिए चीफ मिनिस्टर बन गए थे, कभी लीडर नहीं बन पाए, आज उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि मैं लीडर भी हूँ और ये उन्होंने बता दिया कि द बक स्टॉप्स हियर, मेरे पास ही समाजवादी। और पिता ने उस चीज के लिए उनको आशीर्वाद दे दिया, चाचा ने बड़ी खूबसूरती से ये ऐलान कर दिया कि हाँ अखिलेश ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे अगली बार जब पार्टी पावर में आए। तो ये रफा दफा करने का तो ये तरीका है, लेकिन अखिलेश के लिए ये बड़ा मेजर स्टेप था जो बताने के लिए कि मैं ही लीडर हूं और इसके पीछे कोई मकसद नहीं था, और वो उन्होंने आज बखूबी जो है दिखला दिया।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। और अब दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा, सुशील झा तमाम अखबारों को उलट पलट के देख रहे हैं, जी क्या खबरें हैं
आज मैं शुरू कर रहा हूँ हिंदी के अखबारों से।
जी
नई दुनिया, GST हसर हर अखबार में टॉप खबर है। GST नई दुनिया की पहली खबर है कि GST की 4 दरें तय, जरूरी चीज़ों पर सबसे कम 5% टैक्स, जेटली साहब की फोटो भी है। NDTV इंडिया एक हिंदी चैनल है, उस पर एक दिन के रोक की खबर सारे हिंदी अखबारों में है। मैं बता दूं कि ये खबर किसी भी अंग्रेजी अखबार में नहीं है पहले पन्ने पर। खबर ये है कि पठानकोट मामले में जो कवरेज हुई थी उस पर एक पैनल का गठन हुआ था, उस पैनल का कहना है कि NDTV इंडिया के एक कार्यक्रम के दौरान कुछ संवेदनशील सूचनाएँ दी गई और जिसकी वजह से उस पर एक दिन के लिए उस चैनल का प्रसारण रोक दिया जाए। NDTV ने कहा है कि ये आपातकाल जैसा एक फैसला है और वो हर विकल्प पर विचार कर रहे हैं।
हमने अपने समाचारों में भी इसे शामिल किया था।
दैनिक जागरण की सबसे पहली खबर, स्मॉग का 17 साल का रिकॉर्ड टूटा, जो दिल्ली में इतना भीषण स्मॉग फैला हुआ है, तो कह रहे हैं कि नवंबर में 17 साल में पहली बार नवंबर के महीने में इतना स्मॉग हुआ है। आधी जरूरी चीज़ें टैक्स फ्री, ये जागरण की दूसरी हेडलाइन है। और पूर्व सैनिक की मौत पर सियासी घमासान, और अखिलेश के रथ के बारे में भी एक खबर उस पर छपी है। NDTV की खबर इस अखबार में भी पहले पन्ने पर है, एक कॉलम की हिंदी अंग्रेजी के अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई और स्मॉग पर यह भी कहता है कि सेकेंड वर्स्ट नवंबर डे इन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल में सबसे ख़राब नवंबर का एक दिन। पाकिस्तान की जो खबर है कि पाकिस्तान ने एक कथित रूप से एक रॉकेट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जिसमें भारत के उच्चायोग के अधिकारी शामिल थे, उसे भी अखबार ने जगह दी है। इसके अलावा साइरस मिस्त्री की भी एक खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने जगह दी जो कहते हैं कि मिस्त्री डू नॉट प्लान टू सेल टाटा सन स्टेक। और जाते जाते इंडियन एक्सप्रेस की खबर जो पहली खबर है कि पाक ब्रीचेज नॉर्म टार्स इंडियन स्टाफ, जो उच्चायोग की खबर है। और इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए ऑफ एयर करने की खबर छपी हुई है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए सुशील।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
त्योहारों के मौसम में लोग जमकर खरीदारी करते हैं और इस बार भी दीपावली पर कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिले, लेकिन दुनिया में जहां अब ऑनलाइन भुगतान लोगों की पहली प्राथमिकता बनती जा रही है उसके एकदम विपरीत भारत में लोग अभी भी खरीदारी के लिए नकद लेन देन ज़्यादा पसंद करते हैं। ये उसी भारत की बात है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकद लेन देन की जगह ऑनलाइन भुगतान पर न केवल जोर दे रहे हैं बल्कि भारत सरकार ने इसके लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी शुरू कर दिया है। बीबीसी संवाददाता शिल्पा कन्नन की रिपोर्ट सुनिए संदीप सोनी से।
हम इस वक्त हैं पुरानी दिल्ली के पुराने थोक बाजार में जहां हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। बड़ी भीड़ है यहाँ पर, हाथ ठेले हैं, बड़े बड़े बक्सों में माल की ढुलाई हो रही है, लोगों की भीड़ है बड़ी। कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई सजावट की चीज़ें ले रहा है, किसी को काजू बादाम खरीदना है। और एक और बात यहाँ नज़र आ रही है वो ये कि सारी खरीदारी, लगभग सारी खरीदारी यहाँ पर नगद लेन देन में हो रही है। लगभग हर दुकानदार आप देखेंगे नोट गिन रहा है, कोई हाथ से तो कोई मशीन से। पुरानी दिल्ली के इस पुराने बाज़ार में हमने एक दुकानदार से जानना चाहा वो नगद में लेन देन क्यों पसंद करते हैं।
नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, बिकॉज होलसेलर मोस्टली कैश में ही डील करते हैं, दे डोंट ट्रस्ट ऑन दैट एटीएम एंड बैंक्स। उनको कैश में डील करना ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि कैश में एक ट्रस्ट रहता है, बेसिकली वो जो परचेज कर रहे हैं वो साथ आपको क्लियरली कैश दे के जा रहे हैं। बैंक्स के अंदर फ्रॉड ज़्यादा हो जाते हैं, एटीएम्स के अंदर फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो इस वजह से वो कैश में डील करना ज़्यादा बेटर समझते हैं होलसेलर्स।
ये तो ही दुकानदार की बात, लेकिन खरीदार क्या कहते हैं आइए सुनते हैं।
एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा झंझट नहीं पालना चाहते हैं, बस यही प्रॉब्लम है, ये इंडियंस की प्रॉब्लम है। कह नहीं सकती, मैं भी एक इंडियन हूँ, मैं भी अगर इस जगह पे होंगी तो शायद मैं भी ये प्रेफर करूँगी कि मुझे भी कैश अमाउंट मिले।
सबकी अपनी अपनी सहूलियतें हैं, लेकिन कुछ महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया था कि वो नगद लेन देन कम से कम करें।
अब वक्त बदल चुका है, पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के द्वारा हम रुपये पा भी सकते हैं, रुपये दे भी सकते हैं, चीज खरीद भी सकते हैं, बिल चुकता भी कर सकते हैं, और इससे जेब में से कभी बटवे की चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। हिसाब रखने की भी चिंता नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक हिसाब रहेगा। शुरुआत थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन एक बार आदत लगेगी तो ये व्यवस्था सरल हो जाएगी।
भारत सरकार और बैंक जहां ऑनलाइन भुगतान पर जोर दे रहे हैं, वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि आम भारतीयों को ये तरीका रास नहीं आ रहा। भारत में तमाम बैंक अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन भुगतान करें। भारत सरकार ने भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से एक नई तकनीक विकसित की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैसे का लेन देन कर सकें। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दरअसल एक नेटवर्क की तरह है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में भुगतान कर सकते हैं। इसके ज़रिए कोई ख़रीदार किसी दुकानदार को सीधे भुगतान कर सकता है, फिर चाहे दोनों के खाते एक ही बैंक में हों या अलग अलग बैंकों में। भारत सरकार चाहती है कि लोग नगद लेन देन कम से कम करें, क्योंकि ये तरीका न केवल महंगा है बल्कि इसके साथ काले धन की समस्या भी जुड़ी हुई है जो कहीं अधिक गंभीर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन,
इन द लॉन्ग टर्म वी विल बी एबल टू ब्रिंग इन लेजिटिमेसी टू एवरी ट्रांजैक्शन।
दीर्घ अवधि में हम हर लेन देन को वैधानिक बनाने में सक्षम होंगे। नगद में होने वाले कई लेन देन काले धन की दिशा में पहला कदम होता है। ऐसे लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ऑनलाइन भुगतान से पता चलेगा कि पैसा कहां से आया और कहां गया।
On 13th March 2016, I stopped carrying cash. I wanted to see, can I live my daily life without using a single penny of cash and maybe using only digital mediums, online mediums, cards and wallets and other things.
अभिषेक पंत उन लोगों में शुमार हैं जो कोशिश करके देख रहे हैं नगद लेन देन के बिना कितने दिन काम चल सकता है, लेकिन राह अभी आसान नहीं है और इसका सबूत है पुरानी दिल्ली का थोक बाजार, जिसका जायजा अभी हम ले रहे थे। और भारत में न जाने ऐसे कितने बाजार हैं, आप और हम मिलकर भी गिन नहीं पाएंगे।
रिपोर्ट के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले हफ्ते से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसका पहला मैच 9 तारीख से राजकोट में खेला जाएगा। बीते बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, तो इंग्लैंड की टीम भी कल भारत पहुंच गई। भारत साल 1984-85 के बाद पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले साल 2012 में इंग्लैंड की टीम ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत में खेली थी और उसे 2-1 से अपने नाम किया था। भारत दौरे पर आई इंग्लैंड टीम के कप्तान एलिस्टियर कुक तब भी इंग्लैंड के कप्तान थे, लिहाजा उनके अनुभव का फायदा इंग्लैंड को जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड का क्लीन स्वीप कर सकती है। इसे लेकर क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
वो टीम का कॉम्पोजिशन कुछ अलहदा था और उन्होंने एक तरह से बड़ा सेटबैक दिया इंडियन टीम को। इस टीम में ऐसा लग रहा है कुछ हल्कापन है, क्योंकि कुक और जो रूट के अलावा बैटिंग में इतनी गहराई नहीं है और गेंदबाजी में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उन्हें तकलीफ पहुंच सकती है, क्योंकि हालांकि मोइन अली, ये 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं, जफर अंसारी लेफ्ट आर्म स्पिनर युवा खिलाड़ी, लेकिन शायद जो बॉलिंग कॉम्पोजिशन थी उनकी पिछली बार जेम्स एंडरसन वगैरह जो थे स्वान और मॉन्टी पानसर के अलावा, वो उस तरह की गहराई नजर नहीं आती, तो शायद इसी वजह से सौरव गांगुली का ये मानना है कि इंडिया व्हाइट वॉश कर लेगी इंग्लैंड को। लेकिन ये भी कहना होगा कि पिछली बार भी हम इसी ओपिनियन के थे कि इंडिया इंग्लैंड को आसानी से हरा देगी, लेकिन पहली टेस्ट हारने के बाद सीरीज जीत के गई थी इंग्लैंड।
उधर पहले तो गेंदबाजों और उसके बाद अपने बल्लेबाजों के दमदार और शानदार प्रदर्शन के दम पर वेस्टइंडीज ने शारजाह में खेले गए 3rd टेस्ट मैच में पाकिस्तान को कल 5 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 153 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट के नाबाद 60 और विकेटकीपर शेन डॉरिज के भी नाबाद 60 रनों की मदद से 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के बावजूद पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। वहीं मेजबान ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से पर्थ में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां स्टंप के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 105 रन था। इसमें सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर का योगदान तेज तर्रार बनाए गए नाबाद 73 रनों का था। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फेफ डु प्लेसी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के सामने उसकी पूरी पारी का पुलिंदा 242 रन पर बंध गया।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में अगले मंगलवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए दोनों दलों ने अभियान तेज कर दिया है। अमेरिका की अदालतों में अगले हफ्ते होने वाले मतदान को लेकर एक कानूनी लड़ाई जारी है, जिसके तहत एक जज ने उस कानून को मान्यता दी है जिसके अनुसार रिपब्लिकन्स के लिए उन इलाकों की निगरानी कठिन होगी जहाँ डेमोक्रेट पार्टी को वोट मिल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थ एजेंसी ने कहा है कि लीबिया के तट से निकले 2 नावों के डूब जाने से कम 200 लोगों के मारे जाने की आशंका है। भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतीय उच्चायोग के आठ अधिकारी मिलकर जासूसी नेटवर्क चला रहे थे। भारत सरकार ने टीवी चैनल एनडीटीवी इंडिया को आदेश दिया है, जिसके चैनल को एक दिन के लिए ऑफ एयर करने को कहा गया है। कंपनी ने कहा है कि आपातकाल के काले दिनों के दौरान प्रेस की आज़ादी छीनी गई और अभी अभूतपूर्व है जिस तरह से एनडीटीवी के खिलाफ कदम उठाया गया है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की यह सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया हेमंत कुशवाहा ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।